ये आकाशवाणी है, अब आप अपर्णा सिंह से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झारखंड के जमशेदपुर में टाटानगर पटना वंदे भारत रेलगाड़ी सहित 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी 660 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इन ट्रेनों का उद्देश्य झारखंड और पड़ोसी राज्यों में रेल कनेक्टिविटी और सुविधाओं पर बढ़ावा देना है। वंदे भारत के परिचालन के बाद देवघर के बैद्यनाथ धाम, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर, कोलकाता के कालीघाट और बेलूर मठ में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस बीच प्रधानमंत्री श्री मोदी आज जमशेदपुर के गोपाल मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कल हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का चुनाव प्रचार शुरू किया। कुरुक्षेत्र में कल चुनावी जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हरियाणा का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों, महिलाओं, किसानों और युवाओं को सशक्त बना रही है। श्री मोदी ने 100 दिनों में 11 लाख से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने आरक्षण, किसान और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताते हुए कहा कि कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का प्रचार भी तेज हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल जम्मू कश्मीर के डोडा में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों को वोट देने का आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर एक साथ मिलकर बनेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवा आतंकवाद से पीड़ित हैं और पार्टियां लोगों को गुमराह करके परिवारवाद को बढ़ावा दे रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर लोगों के हितों के लिए कार्य करेगी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के हकीम मोहम्मद यासिर ने बड़गांव में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वंशवाद की राजनीति ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों के साथ समझौता किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं अशोक गहलोत, अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। हरियाणा विधानसभा के लिए मतदान 5 अक्टूबर को होगा और मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आतंकवाद विरोधी ढांचे को मजबूत करने के लिए एनआईए और राज्य आतंकवाद विरोधी दस्तों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के दूसरे दिन की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। गृहमंत्री ने राज्य के पुलिस महानिदेशकों से 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समृद्ध, मजबूत और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम करने की अपील की। केंद्र सरकार ने प्याज पर निर्यात शुल्क 40% से घटाकर 20% करने का निर्णय लिया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि निर्णय किसानों और प्याज से संबंधित अन्य क्षेत्रों के लिए भी लाभकारी होगा। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्याज उत्पादक किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ओणम केरल के लोगों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को मनाने का पर्व है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह त्यौहार फसलों की कटाई का प्रतीक और केरल की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को मनाने का दिन है। नीरज चोपड़ा कल ब्रसल्स में डायमंड लीग फाइनल में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने फाइनल में 87.86 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया। नीरज सिर्फ 1 सेंटीमीटर से चैंपियन बनने से चूक गए। पहले नंबर पर ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स रहे। उन्होंने 87.87 मीटर का थ्रो किया। एंडरसन ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीता था। नीरज लगातार दूसरे वर्ष डायमंड लीग में उपविजेता रहे। 2023 में चेक गणराज्य के जैकब वाडलेच से हारने के बाद नीरज अपनी डायमंड ट्रॉफी का बचाव करने से चूक गए थे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।